Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
करते हो ना आप, ये गंध कौन सा गंध है? देखो थोड़ा दुर्गंध आ रहा है इस हॉल में, करता है कोई कह दे ना दुर्गंध आ रहा है तो उसको पहले भान ना भी हो ना तो सावधानी पूर्वक के नाक श्वास खींच कर मैंने तो खबर नहीं पड़तो, करता है वो। हाँ हाँ छे छे गंध छे, दुर्गंध छे, सुगंध छे, है ना? तो बराह भगवान ने सू सू करके ही खोजा था पृथ्वी को, क्योंकि ग्राण इंद्रिय के साथ पृथ्वी का संबंध है, तब प्रगंधवती पृथ्वी। तो तभी ग्राण इंद्रिय का प्रयोग न किया होता तो शायद बराह भगवान को पृथ्वी खोजना मुश्किल पड़ता। तो उन्होंने ग्राण इंद्रिय का प्रयोग किया, लिया अपने नाक, इसीलिए नाक बड़ा किया बराह अवतार का, कितना बड़ा नाक बा। तो कोई अच्छा काम करते हैं तो व्यक्ति भी नाक बड़ा कर लेता है, इसका मतलब क्या होता है? वही होता है शुकर। तो अहंकार अभिमान से नाक बड़ा कर लेता है ना, तो वो शुकर ही है और कुछ नहीं है। कर्तृत्व अभिमान से नाक बड़ा करने की क्या जरूरत थी, लेकिन करता है, जीव भाव है उसमें। यदि उस विष्टा में भोजनत्व न होता तो वो उसके प्रति अनुरक्त क्यों होता है? इसका मतलब भोजन अब तक का बात नहीं हुआ है, लेकिन आपकी हृदय स्वीकार करने को तैयार नहीं होती। होती है, भोजनत्व तो विद्यमान होने पर भी उसको भोजन के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। और यदि कदाचित खुदा न खास्ता ऐसा नहीं कहो, जैसे गुजराती लोग करते हैं, शाम का भात बच गया तो सुबह मुठिया बना देते हैं, करते हैं कि नहीं? दाल ढोकली बना देंगे, चक्के बनाएंगे, कुछ न कुछ बनाते हैं, शाम को बचा हुआ कुछ है तो सुबह कुछ दूसरे रूप। अब खुदा ने खास कर गुजराती के बदनाम नहीं कर रहा हूं मैं, अब गुजराती तो भात को मुठिया बना देते हैं, खुदा ने खास कर कोई नेपाली हो तो उसी विस्का को मुठिया बना के सामने रख दे दूसरे थाल में, तो एक चाहे शू छे तो कहा मुठियो छे मुठियो, इसके अंदर देख ले तो जब खाएगा पता चलेगा मुठियो क्या है। तो भोजनत्व का बात नहीं हुआ, लेकिन स्वीकार करने की बात है। विष्टा को कोई भी मनुष्य भोजन के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता, इसीलिए जहां वो स्वीकार कर सकता है उसी को ही उस रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। इसलिए सर्व रूप को परमात्मा शिव के रूप में कोई व्यक्ति स्वीकार नहीं कर पाता। तब फिर शंकराचार्य जी ने, कालिदास ने, पुष्पदंताचार्य जी ने, आचार्यों ने मिलकर आठ स्वरूप को ही शिव के रूप में प्रस्तुत किया, अष्टमूर्ति। जैसे दर्पण मिरर भी पार्थिव है और दीवार भी पार्थिव है, दोनों पार्थिव है, पृथ्वी का कार्य है, पृथ्वी का परिणाम है, लेकिन दीवार में प्रतिबिंब पड़ता नहीं है और मिरर में, दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है। इसी प्रकार के यूं तो सभी जगत के जितने भी पदार्थ हैं, परमाणु से लेकर सुमेरु पर्यंत, सब के सब पदार्थ शिव स्वरूप ही हैं, शिव ही हैं, शिव स्वरूप ही हैं, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाता है। तब कहा कि इन आठ स्वरूप में शिव की भावना करो। भोरम भाजनो नीलो अम्बर महर नाथो हिमांशु उपमान इत्याभाति चरा चरात्मकम इदम यस्यैव मूर्ति अष्टकम। सारा चर अचर सारा विश्व ब्रह्मांड यही आठ स्वरूप से व्याप्त है। सूर्य भगवान शिव का प्रत्यक्ष, तमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि है, गणपति अथर्व शीर्ष में पाठ करते हो कि नहीं? तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्मासि, तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। आप लोग कहते होंगे कि महाराज आपको परमात्मा का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, भगवान का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो हम पूछते हैं तुमको सूर्य दिखाई पड़ता है कि नहीं? है, सूर्य दिखाई पड़ता है कि नहीं? तो वही तो भगवान है, और कौन सा भगवान खोज रहे हो तुम। उसको प्रत्यक्ष दिखते हुए सूर्य को परमात्मा के रूप में अनुभव नहीं कर पाते हो तो फिर परमात्मा का अनुभव तुम कभी भी नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे। पृथ्वी प्रत्यक्ष दिख रही है, अनुभव में आ रहा है, उसको तुम परमात्मा का अनुभव नहीं कर पा रहे हो तो शायद परमात्मा का अनुभव कभी भी नहीं कर पाओगे। जल है वो राम अनवांशी अनला तेज है, अग्नि है, यही तो परमात्मा का प्रत्यक्ष स्वरूप है। अनिला वायु और अंबर आकाश, हिमांश अहरनाथ हिमांशु चंद्रमा, अहरनाथ सूर्य, पुमान ये सब यजमान मूर्ति, जीवात्मा जितनी भी हैं यही सब यजमान मूर्ति हैं। इत्याभाति चराचरात्मकम इदम् यस्यैव मूर्ति अष्टकम् नान्यत् किंचन विद्यते विमृशतम् यस्मात् परस्मात् विभो। मैं जब विचार करता हूं तो उस परमात्मा के अलावा दूसरा पदार्थ प्रतीत होता ही नहीं है। ऐसा होता हुआ भी माया परिभ्रामितः उस परमात्मा का तो भान नहीं होता, खाली जगत नाम रूप का भान होता है। कहता है कि कहाँ है परमात्मा, कहाँ है परमात्मा, कहाँ है परमात्मा, सब विरोचन होके बैठ गए हैं, सब विरोचन हो गए हैं, उसी के हृदय में छुप कर बैठे हैं भगवान, और विरोचन खोजता फिर रहा है। वैकुंठ पाताल स्वर्ग और पाताल मर्त्य लोक में, कहाँ गया, मेरे से डर के मारे भाग गया, मर गया, खत्म हो गया, है नहीं पृथ्वी में परमात्मा, हमने सारे तीनों लोक खोज डाला, कहीं नहीं है परमात्मा, निश्चिंत होकर बैठ गया वो, क्योंकि खोज कहाँ रहा है वो, बाहर खोज रहा है। और जबकि बाहर भी वही परमात्मा है लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, और जो मानने को तैयार नहीं है तो परमात्मा कहाँ से प्रकट होगा। संत मेनम तथो विदो असत ब्रह्मेति चेत वेद असत एव भवति। जो परमात्मा नहीं है कहता है, परमात्मा की सत्ता का निषेध करता है, वह भी सत्ताहीन होकर उस स्वयं निषिद्ध हो जाता है, और परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करता है। अस्ति ब्रह्मेति चेत वेद संत मेनम तथो विदो, जिसने परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करता है तो वो परमात्मा के अनुभव कर सकता है। ये सब साधन और साध्य का स्वरूप का वर्णन हो गया है। एक श्लोक से लेकर आठ श्लोक तक साध्य के स्वरूप का वर्णन किया है, और नौवां श्लोक उस साध्य को प्राप्त करने के साधनों के बारे में बता दिया है कि उसी की उपासना से उसी को प्राप्त किया जा सकता है। अब ये जो दसवां श्लोक है फलश्रुति है। वेदांत श्रवण करने दक्षिणामूर्ति स्तोत्र सुनने का क्या फल है, विचार करने का क्या फल है, पाठ करने का क्या फल है, क्या फायदा, हमको ये वाक्य याद आ जाता है। बहुत पहले प्रेम कुटीर में कथा करते थे नियमित रूप में, जैसे अभी प्रेमपुरी में कर ही रहे हैं, तभी से ही प्रेमपुरी और प्रेम कुटीर वहां मई महीना करते थे या जून महीना, वहां पूरा करते हम यहां आते थे। अप्रैल में विश्वदान जी करते थे प्रेम कुटीर में, विश्वदान जी प्रेम कुटीर पूरा करके प्रेमपुरी आते थे मई में, और हम प्रेम कुटीर जाते थे, फिर विश्वदान जी यहां मई में यहां करके फिर अहमदाबाद जाते थे, और हम फिर जून में यहां आते थे। तो वहां हम कथा कर रहे थे तो एक सज्जन आके, कॉपी होता है ना राम नाम लिखने का, बांटने लग गए श्रोताओं के बीच में, राजस्थान से आए थे वो, और हमें कुछ कॉपी रखी गए ताकि महाराज और कुछ है उनको दे देना, राम नाम लिख कर रखें और एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। फिर हम गए, हम राम नाम मंत्र बैंक हमने खोल रखा है, हमने कहा ठीक है। एक बहन आई, हमने दिया उसको, ले लिख लो राम नाम, लिख लो कॉपी पूरा भर के ले आना। कॉपी और पेन दोनों चीज दिया। महाराज ये राम नाम लिखने का क्या फायदा होगा, फट से प्रश्न कर लिया उन्होंने, और हमारे मुख से फट से उत्तर निकला बेफायदा होगा। क्या फायदा होगा तो फिर बेफायदा होगा, और क्या फायदा होना है। अरे भाई तुम जिसको फायदा समझ रहे हो इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं। तुम इससे फायदा, तुम्हारे दृष्टि में फायदा किसको कहते हैं? शरीर में रोग होगा तो रोग चला जावे, उसको तुम लाभ कहोगे? तो धन है तो कहीं लगाया हुआ तो वो धन उसको 10 दुगना होकर तुम्हें वापस आ जाए, तुम उसको फायदा कहोगे? है बेटा यदि पढ़कर डिग्री लेके आवे तो उसको तुम फायदा कहोगे? ये सब लोग, संसार के लोग इसी को ना फायदा मानते हैं। हमने कहा इसको पूरा कप लिखोगे तो बेफायदा होगा। वो क्या होता है महाराज बेफायदा, हमको समझ में नहीं आया। हमने कहा देखो ये संसार तो चित्त के बिगड़ेलपना के काम से संसार उपलब्ध होता है। चित्त जब तक बिगड़ेगा, बिगड़ा रहेगा, तभी तक ये संसार के सब ठीक ठाक रहेंगे। और चित्त यदि ठीक हो जावे तो फिर ये चित्त, ये संसार चला जाएगा। और तुम पूरी तरह निष्ठा से ये राम नाम लिखोगी, तुम्हारा चित्त शुद्ध होगा और तुम्हारा जगत बिगड़ जाएगा। स्वाभाविक है, मैं तो यथार्थ साधु की भाषा में व्याख्या करके, तुम्हारा जगत बिगड़ जाएगा, संसार बिगड़ जाएगा। और शायद इसी को तुम लोग कहते हो बेफायदा, संसार बिगड़ जाना तुम लोग बेफायदा कहते हो, और हम कहते हैं कि संसार बिगड़ जाना सबसे बड़ा फायदा है। है कि नहीं बोलो? आत्मलाभ अपिस दक्षिणामूर्ति के मानसोल्लास सुरेश्वराचार्य जी के पहले ही श्लोक है, आत्मलाभ परो लाभो नास्ति कवयो विदुः तल्लाभार्थम कवि स्तौति स्वात्मानम परमेश्वर। आत्मलाभ से बढ़कर दूसरा लाभ है ही नहीं, और उसके आत्मलाभ के मूल साधन यही है कि भगवत चिंतन करो, नाम स्मरण करो, सत्संग करो, उसी से आत्मलाभ है। और तुम्हारे दृष्टि में तो ये बेफायदा हुआ कि नहीं, और हमारे दृष्टि में यही सबसे बड़ा लाभ है, आत्म उपलब्धि, चित्त शुद्धि। ये जो है यहाँ फलश्रुति सुनाया जा रहा है, सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुस्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात् तथार्थ मननात् ध्यानाच्च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूति सहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धे तत्पुनरस्तथा परिणतम् ऐश्वर्यमव्याहतम। फायदा ही फायदा, लाभ ही लाभ है। ये तो और भी सुंदर बात कह रहे हैं, हमने तो थोड़ा खतरनाक बात कह दिया था, बेफायदा होगा, संसार बिगड़ जाएगा। ये तो वो भी नहीं कह रहे, बड़े दयालु हैं शंकराचार्य जी, बड़े कृपालु हैं। संसार के जीव घबरा जाएंगे, बेफायदा होगा कह देंगे तो, आत्मानंद तुमने गलत कह दिया, ऐसा नहीं कहना, बहुत फायदा होगा कहना चाहिए, तभी वह उसमें रुचि होगी, तभी प्रवृत्त होंगे, नहीं तो घबरा जाएंगे। देहाध्यास छूट जाएगा तो घबरा जाएंगे, देहाध्यास छूट जाएगा तो फिर खाना भी छूट जाएगा, बोले हाँ छूट जाएगा, तब तो फिर श्वास लेना भी छूट जाएगा, बोले हाँ छूट जाएगा, तब तो कैसे बेकार है, तुम्हारा वेदांत नहीं चाहिए। सब खुले रूप में सीधे कह देंगे तुम्हारे वेदांत हमें नहीं चाहिए। यहाँ कह रहे हैं बड़ा सुंदर, क्योंकि सर्वात्म भाव से संबंधित ये स्तोत्र है दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, सब कुछ परमात्मा है, इस भाव को सिद्ध करने के लिए। अस्तिभाति प्रियम चैव नाम रूपम च पंचमम आद्यत्रयम् ब्रह्म रूपम माया रूपम ततो द्वयम्। अस्तिभाति प्रिय, इस तीन स्वरूप के माध्यम से सारे के सारे जगत में यही तीन भाव विद्यमान होने के कारण यही सर्वात्म भाव है परमात्मा की, परमात्मा के सर्वात्म भाव को प्रकट करने वाला ये स्तोत्र है। सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुस्मिंस्तवे, इस स्तोत्र में, दक्षिणामूर्ति के ये स्तोत्र में सर्वात्म भाव को प्रकट करने के सारे विचार व्यक्त किए हुए हैं। तेना इसी कारण से अस्य स्तवे यह स्तोत्र का तेनास्य श्रवणात् तथार्थ मननात् ध्यानाच संकीर्तनात्। चार चीज शंकराचार्य जी ने यहां रख दिया क्रम से। पहले क्या किया, स्तोत्र का ठीक से श्रवण कर लो, तेनास्य श्रवण अस्य श्रवणात् स्तोत्र से श्रवणात्, इस स्तोत्र के ठीक से श्रवण करने से। खाली श्रवण मात्र से नहीं, मननात्, क्योंकि श्रवण के बाद मनन है। आत्मावारे श्रोतव्य मंतव्य निधिधाषितव्य, श्रुति का वाक्य क्रम से है ये। श्रवण के बाद मन, एक घंटा श्रवण करो तो शास्त्र ने लिखा है, एक घंटा यदि तुम श्रवण करते हो तो 100 घंटा मनन करनी चाहिए। और हम लोग केवल श्रवण करते हैं, मनन नहीं करते, इसलिए सुने सुने पाके कान तो ना आया ब्रह्म ज्ञान। क्योंकि हम मनन नहीं करते हैं इसलिए श्रवण करते हैं, श्रवण करते करते कान पक जाते हैं। हमने श्रवण को इति कर्तव्यता मान ली है, मनन में हमारी गति नहीं है, प्रवेश नहीं है। तेनास्य श्रवणात् श्रवणात् सतगुणम्, 100 गुणा मनन करना चाहिए। अब मनन से 1000 गुणा निधिध्यासन करनी चाहिए। हमको लगता है कि निधिध्यासन के तो हम 100 में 1 पॉइंट भी, उस निधिध्यासन की भूमिका को हम छू ही नहीं पा रहे। मनन की भूमिका में कदाचित कोई बैठा हो, प्रवेश कर लिया हो 1 पॉइंट, जितना श्रवण किया है उसके 1 अंश, 100 में से 1 अंश कोई मनन कर लिया हो तो कर लिया हो, लेकिन निधिध्यासन की भूमिका में तो हम प्रवेश ही नहीं कर पाए हुए हैं। तेनास्य श्रवणात् तथार्थ मननात् ज्ञानात्। यहां जो ध्यान शब्द कहा गया है वह निधिध्यासन के लिए ये ध्यान शब्द, क्योंकि वेदांत में जो ध्यान शब्द है वह निधिध्यासन के लिए ही आता है। चित्त वृत्ति निरोध का नाम वेदांत को ध्यान में इष्ट नहीं है। हाँ, चित्त वृत्ति बने रहे, चित्त वृत्ति से एकमात्र परमात्मा भाव बना रहे और उसी निष्ठा में एक प्रवाह, मनन में विरोधाभास परिहार आदि होता है, उसके बाद निश्चित अर्थ किया गया जो निष्कर्ष है उसी में चित्त टिका रहे, उसी भाव में, उसी को निधिध्यासन कहते हैं और उसी को ध्यान कहते हैं। और उसी का फल होता है धर्म मेघ समाधि, जो कि पंचदशी में विद्यारण्य मुनि जी ने कहा है, उसका नाम है धर्म मेघ समाधि। वर्षत्येष सहस्रशः हजारों धर्म मेघ। मान लो कि साक्षात वह अमृत का वर्षा, अमृत की वर्षा होती है, मान लो कल्पना कर। अनेन विलयम याति ही, जन्म जन्मांतर कृत जितने भी संचित कर्म हैं उस धर्म वेग समाधि से सब विलय प्राप्त हो जाते हैं, पंचदशी में कहा गया। इसलिए यहां कहा तेनास्य श्रवणात् तथार्थ मननात् ध्यानात् च संकीर्तनात्। उसके बाद निधिध्यासन हो और फुर्सत मिले तो अपनी अनुभूति को दूसरों को भी सुनाओ, संकीर्तनात्, तुम भी गाओ, मस्ती से गाओ। दुनिया की चर्चा करने की अपेक्षा तो इन्हीं स्तोत्रों को गुनगुनाओ, गुनगुनाते रहो। और क्या करोगे, बोलने का वादा किया है तो सदा गुनगुनाते रहना। तुम लोग तो बोलने का वादा है ही नहीं है, बोलने का वादा किया है तो क्या करोगे, वादा नहीं किया इसलिए बोलते रहोगे, और क्या, गुनगुनाओ, बोलने की वादा करो, मौन हो जाओ और इसका गुनगुनाओ, संकीर्तना सुनाओ, अभ्यास बढ़ता है। सुने हुए को दूसरे को सुनाओ तो अभ्यास बढ़ता है। हम लोग पढ़ते समय में पढ़ते थे, क्लास के बाहर निकले, फिर बाहर बैठे, क्लास के सभी साथी लोग बैठते थे, फिर डिस्कशन शुरू करते थे। इसका क्या अर्थ हुआ है? तो उसने जो समझा वो बताएगा, हमने जो समझा उसको बताएंगे, उससे छूटा हुआ है हमसे वो कवर कर लेगा, हमसे छूटा हुआ है वो उससे शेयर कर लेगा। इस तरह हम लोग परस्पर बैठकर मनन करते थे, विचार करते थे। संकीर्तन, सुनी हुए को सुनाओ। सर्वात्मत्व तो महाविभूति सहित, उससे क्या फायदा होगा? क्योंकि सर्वात्मत्व महाविभूति सहितम सर्वात्मत्व भाव की प्राप्ति उसको भी हो जाता है, क्योंकि परमात्मा में सारे ऐश्वर्य भाव विद्यमान है, सर्वैश्वर्य भाव है ना परमात्मा में, उसी को कहा महाविभूति सहितम। क्योंकि परमात्मा भाव की प्राप्ति होगा तो परमात्मा में जो ऐश्वर्यता है, भगवत्ता है, ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से स्त्रीय ज्ञान वैराग्य शैव शरणाम भग इति ऋणा, वो सारे ऐश्वर्य उस श्रवण करता, मनन करता, निधिध्यासन करता को स्वतः प्राप्त हो जाएगा। स्वतः प्राप्त हो जाएगा मतलब क्या हुआ? क्योंकि उसका तो वो स्वरूप है ही है, उसके लिए कुछ उत्सर्ग करने की जरूरत नहीं है। वो तो आगंतुक जो नैसर्गिक है उनको हटाना है बस, उपाधियों को हटाना है, भ्रांति को हटाना है। भ्रांति को हटते ही उसका ये सारा का सारा भाव तो परमात्मा के सर्वात्म भाव तो उसका स्वरूप ही है, इसलिए स्वतः अपने आप उसको प्राप्त हो जाएगा। सर्वात्मत्व महाविभूति सहितम स्यादीश्वरत्वम स्वतः, उसकी ईश्वरता परमात्मा भाव वो स्वतः सिद्ध है। सिद्धे तत् पुनरस्तदा, लियो जी डरना नहीं, क्या फायदा है तो तुम जिसको फायदा कहते हो ना वो भी तुम्हें मिलने वाला है। पुनः सदा सिद्धि, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता बोलते हो ना परमात्मा को, क्या बोलते हो? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता है। और सर्वात्म भाव प्राप्त हो जाएगा तुम्हें तो वो अष्ट सिद्धि नव निधि तुम्हारी अपने ही चरण में अपने आप आ जाएगी कि नहीं है? तो तुमको स्वतः प्राप्त हो जाएगा और तुम कृपा करके और को दे सकोगे। अभी तक तुम भिखारी थे, अब मालिक हो जाओगे, देने लग जाओगे, क्योंकि तुम्हारा अपना सर्वात्मा भाव प्रकट हो गया है। सिद्धे तत् पुनरस्तदा अणिमा लगिमा प्राप्य प्राकाम्य ईषित्व वसित्व, ये सारे भाव तुम्हारा अपना ही स्वरूप है। वो भारी को हल्का कर देना, हल्के को भारी बना देना, यही तो ये अष्ट सिद्धि के अंतर्गत है। और ये आपकी शक्ति क्षमता है कि भारी को हल्का बना रहे हो, है कि नहीं? नहीं तो 75-80 किलो वजन लेकर चलना संभव था? है 80 किलो वजन कौन लेकर चल रहा है? कम है 80 किलो वजन ढोकर चलना? ये तुम्हारी सिद्धि है, ये अष्ट सिद्धि की एक सिद्धि है। ये बड़े भारी को हल्का करके तुम्हारे स्पर्श होते ही इतना भारी भरकम शरीर, 80 किलो वजन एक फूल की तरह तुमको भान ही नहीं हो रहा है कि मैं वजन उठा रहा हूं, भान हो रहा है? बोलो, क्या तुम्हारी सिद्धि का फल है कि नहीं? ये परमात्मा भाव है कि नहीं बोलो? अणिमा लगिमा प्राप्य प्राकाम्य, देख लो। अणिमा यह है कि तुम नख से लेकर शिख पर्यंत ये पंचभूतात्मक शरीर के एक एक अंग अंग में व्याप्त हो, व्याप्त हो कि नहीं? यही तुम्हारी व्यापकता है। अणु अणु में पहुंचे हुए हो, रग रग में पहुंचे हो, ये तुम्हारी यही तो सिद्धि है। तुम कहां नहीं हो, पूरे पिंड में व्याप्त हो गए हो, तो कम तुम्हारी सिद्धि है ये। अणु रणीयान महतो महीयान, अणु से अणु यह है कि तुम हिता नाम के नाड़ी के अंदर भी प्रवेश हो, सुषुम्ना नाड़ी के अंदर भी प्रवेश हो। 72 करोड़ नाड़ी, कितनी सूक्ष्म होंगे 100 नाड़ी का, 72 करोड़ बालाग्र शतभाग का, तुम्हारी जो मुख्य नाड़ी है बाल के अग्रभाग की जो नोक है इतनी बारीक तो तुम्हारे मुख्य नाड़ी है उनका 72 करोड़ भाग हुआ है। यानी कितनी सूक्ष्म की कल्पना कर लो, और उसके अंदर तुम वितरण कर रहे हो, आराम से घूम रहे हो, तो कितनी सूक्ष्म हो, अणु हो, और इतनी महान हो कि नख से लेकर शिख पर्यंत तुम व्याप्त भी हो। अणु रणियान महतो मयान, ये सब अष्ट सिद्धि स्वतः प्रकट हो जाता है तो परिच्छिन्नता भाव समाप्त हो जाता है, दासता भाव समाप्त हो जाती है, दीनहीन भाव समाप्त हो जाता है, परम संतुष्टि की प्राप्ति स्वराट भवती। छांदोग्य उपनिषद में लिखा है, बृहदारण्यक उपनिषद में भी है, स्वराट भवती। वो तो अपने आप राजा हो जाता है, सम्राट हो जाता है, और क्या, पिंड का राजा हो जाना ही ब्रह्मांड का राजा है भाई। तुम ठीक से पिंड का राजा नहीं बनते हो इसलिए ब्रह्मांड के दास बनकर घूम रहे हो। सिद्धे तत् पुनरस्तदा परिणतम ऐश्वर्यम अव्याहतम, बिना रोके सारे ऐश्वर्य तुम्हारे अधीन हो जाएगा। अमानव पुरुष तुम्हें तो स्वागत करने के लिए आएंगे, ब्रह्मसूत्र का स्वाध्याय में चल रहा है ना, यही आओ आओ हम तुम्हारे स्वागत के लिए खड़े हैं। ये स्तोत्र पाठ की फलश्रुति के साथ साथ ही आज ये 28 दिवसीय दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का प्रवचन श्रृंखला को यही पूरा करते हैं, और आज ही हम फिर शाम की फ्लाइट से जा रहे हैं बहुत दूर, 7 समुद्र पार यूएसए जा रहे हैं, रात की फ्लाइट है, तो इसलिए 2 दिन हम इस बार से ये प्रवचन की श्रृंखला के अंतर्गत 30 तारीख तक के क्रम को 2 दिन पहले विराम करते हुए हम जा रहे हैं। उनकी व्यवस्था, आगे की व्यवस्था समिति संचालक आश्रम संचालक के हैं, वे लोग सब कर रहे हैं, और कल से फिर सारी व्यवस्था होगी। तो आशा है कि ये सत्संग इसी तरह चलता रहे, किसी न किसी प्रकरणों के माध्यम से हम वेदांत के रहस्यों को समझें, और परमात्मा के साथ हमारी भावना जुड़ी रहे, और परमात्मा इसी तरह हमें कृपा करते रहें, और अपने भूले हुए स्वरूप को हम पुनः स्मरण करके अपनी स्वरूप स्थिति को प्राप्त कर सकें। ये हार्दिक शुभकामना के साथ ये दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के श्रृंखला को यहीं पूरा करते हैं, इस साल के प्रवचन श्रृंखला को यहीं पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम
नारायण 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 नारायण। संतों के श्री चरणों में प्रणाम। इन 28 दिनों में जो परमानंद के अनुभूति में हुई है वो केवल अनुभव कर सकते हैं। स्वामी जी ने हमारे सामने एक दर्पण रख दिया कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। संत जी कहते हैं कि ये मन में निश्चय कर लो कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, बाकी सब कुछ मिथ्या है। केवल केवल शिव ही सत्य है, केवल केवल राम ही सत्य है, केवल केवल कृष्ण ही सत्य है, इसके अलावा सब कुछ मिथ्या है। यदि इस बात को हम अपने जीवन में धारण कर लें तो हमारा सत्संग करना सफल हो जाए। मैं और कुछ अधिक नहीं कहकर ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर हम सबको सद्बुद्धि दे, और जो संत हमें बताते हैं उसको हम अपने जीवन में, हम जानते तो हैं लेकिन हमारे जीवन में उतर जाए, हम उसको माने रख जाए, ये ईश्वर से प्रार्थना है। इन शब्दों के साथ मैं आप सबकी ओर से प्रेमपुरी आश्रम की ओर से संतों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्।
महाराज जी ने बताया कि विदाई की माला है। महाराज जी परसों आपने बताया था कि हाय हाय करके किसी को विदा न करें, बाय बाय करें। और अंग्रेजी ऐसी है कि हाय हाय को अगर हम लिखें तो HIGH करके लिखे तो ऊंची ऊंची बातें, यानी जो वेदांत की हमने उच्चतम बातें महाराज जी से सुनी, उसके बाद उसी हाई हाई से, उसी उच्चता से उत्कर्ष के लिए, यानी महाराज जी जो जा रहे हैं USA वगैरह में, तो बात हुई कि जैसे अनेक कौमों में अपनी अपनी सुंदर जगह वहाँ बनाई है, कम्युनिटी हॉल बनाए हैं, मंदिर बनाए हैं, वैसे महाराज जी नेपाल से आते हैं, और यह जरूरी है कि हमें हमारी राष्ट्रभाषा, हमारी मातृभाषा, हमारे वतन, हमारे राष्ट्र का गौरव रहना चाहिए, और उसी के लिए कुछ न कुछ करने की एक तमन्ना, एक इच्छा और एक प्रण होना चाहिए कि जिससे मैं कुछ कर सकूं। तो महाराज जी जो वहाँ जा रहे हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ऐसी हाई हाई वाली बातें, ऐसी ऊंची ऊंची बातें लेके जा रहे हैं, ऊंचे ऊंचे ख्याल लेके जा रहे हैं उनके तिबेटी के लिए, उनके जो वहाँ बसे हुए हैं उनके लिए कुछ अच्छा करने के लिए, वहाँ उनका पूरा कम्युनिटी हॉल, कुछ मंदिर है, कुछ बहुत सारी अच्छी बातें महाराज जी लेके जा रहे हैं। हम बाय बाय करते हैं आपको बड़े प्यार से कि आप अच्छी खबर लेके अगले साल आओ, और यही जैसे दक्षिणामूर्ति सूत्र हमने बहुत ही सुंदर इससे महाराज जी से ग्रहण किया, उसी प्रकार कोई और ग्रंथ से महाराज जी से हम लोग वाणी उनकी सुनेंगे अगले जून में। वही स्वाध्याय एवं प्रवचन महाराज जी का 1 से 30 जून तक होगा, जिसका हमें लाभ मिलेगा।